आज है 24 मार्च दिन गुरुवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। ब्रसल्स में हुए आत्मघाती हमलों में शामिल थे दो भाई।
En ce qui concerne l'attentat dans la station de métro Malbec à Bruxelles, le métro visé quittait la station Malbec en direction.
जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर पीडीपी के नेता करेंगी विधायकों से मुलाकात। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाहर जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार के भाषण के बाद तनाव। होली के मौके पर होने वाले कवि सम्मेलनों का कैसे बदला स्वरूप।
जयशंकर प्रसाद जी ने 1930 के बाद काशी में होली की गाली की एक परंपरा शुरू की थी। उस कविताएं होती थी देश के राजनीतिक प्रवेश पर। देश का और विदेश का कोई भी बड़ा नेता नहीं बचता था जिसको गालियां न दी जाती।
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। फ्रांस और बेल्जियम के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को ब्रसल्स में आत्मघाती हमला करने वालों में से एक ने बीते साल नवंबर में हुए पेरिस हमलों के लिए बम बनाए थे। अधिकारियों का कहना है कि नाजिम लाचरावी का डीएनए पेरिस में इस्तेमाल की गई सुसाइड बेल्ट से मिला है। ब्रसल्स के एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर हुए हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए थे। नाजिम लाचरावी और दो भाइयों खालिद और इब्राहिम बकरावी ने हमलों में खुद को भी मार लिया था। माना जा रहा है कि एक हमलावर फरार हो गया है, जिसे पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर का कहना है कि ब्रसल्स के हमले दर्शाते हैं कि यूरोप को इस्लामिक स्टेट को सीरिया और इराक में हराने के लिए और अधिक कदम उठाने की जरूरत है। कार्टर ने कहा कि यूरोप को भी इस जिहादी समूह के खिलाफ ऐसे ही अधिक कार्रवाई करनी चाहिए जैसे कि अमरीका ने की है। वहीं राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट को हराना उनकी पहली प्राथमिकता है। ओबामा ने कहा कि ऐसा सोचना गलत है कि सीरिया और इराक में अंधाधुंध बमबारी करने से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा,
What we don't do and what we should not do is take approaches that are going to be counter-productive.
हम जो नहीं करते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए वो है ऐसा रवैया अपनाना जिसके उल्टे नतीजे निकलें। इसलिए जब मैं किसी को ये कहते हुए सुनता हूँ कि हमें सीरिया और इराक पर कारपेट बम गिराने चाहिए, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ ये अमानवीय है, हमारे मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि यह इस्लामिक स्टेट को एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पर धमाका करने के लिए तैयार नए लड़ाके भर्ती करने में मदद ही करेगा। ऐसा करना सही रणनीति नहीं होगा। ब्रितानी शोधकर्ताओं का कहना है कि स्कैन करने के तरीकों में हुए सुधार से गले और सिर के कैंसर के लिए कैमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराने वाले मरीजों को सर्जरी की जरूरत कम पड़ेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैंसर कोशिकाओं को पहचानने के लिए उन्नत इमेजिंग तकनीक के इस्तेमाल से ऑपरेशन करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल इलाज कराने वाले 80% मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत होती है। ताजा शोध के मुताबिक स्कैन करने की नई तकनीक के बाद यह संख्या घटकर सिर्फ 20% ही रह जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन में लड़ रहे विपक्षी गुट संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं, जो अगले महीने 10 अप्रैल से शुरू होगा। संघर्ष विराम शुरू होने के 8 दिन बाद शांति वार्ता शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह समझौता युद्ध समाप्त करने का अंतिम मौका है। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि एक चीनी नागरिक ने संवेदनशील सैन्य डाटा चुराने और उसे चीन भेजने के आरोपों को स्वीकार किया है। अमरीकी न्याय विभाग के मुताबिक सुबिन नाम के इस व्यक्ति ने संवेदनशील सैन्य डाटा चुराने के लिए सैन्य कॉन्ट्रैक्टरों के नेटवर्क हैक कर लिए थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। ब्रसल्स के अभियोजक का कहना है कि मंगलवार को हुए आत्मघाती हमलों में ब्रसल्स के ही रहने वाले दो भाई शामिल थे। तुर्की का कहना है कि उसने बीते साल जून में एक संदिग्ध हमलावर को तुर्की से वापस यूरोप भेजा था। वहीं फ्रांस और बेल्जियम के अधिकारियों का कहना है कि ब्रसल्स हमले में शामिल चरमपंथी ने ही नवम्बर में पेरिस में हुए हमलों के लिए विस्फोटक तैयार किए थे। ब्रसल्स में हुए हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
ब्रसल्स में हुए आत्मघाती हमलों में दो भाई भी शामिल थे। उनकी पहचान खालिद और इब्राहिम अल बकारू के रूप में हुई है। संघीय अभियोजक के मुताबिक इब्राहिम ने एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जबकि खालिद ने मालबीक मेट्रो स्टेशन को। बेल्जियम के संघीय अभियोजक फ्रेडरिक लियू ने एक प्रेस वार्ता में बताया। ब्राजील के माइलबीक मेट्रो स्टेशन पर हुए हमले में प्रभावित मेट्रो माइलबीक मेट्रो स्टेशन से आर्ट्स लुई स्टेशन की ओर निकली थी। धमाका दूसरे डिब्बे में उस वक्त हुआ जब वो प्लेटफार्म पर ही था। आत्मघाती हमलावर की पहचान उसके फिंगरप्रिंट के जरिए हुई। वो इब्राहिम का भाई खालिद अल बकारू था, जो ब्राजील में ही 12 जनवरी 1989 को पैदा हुआ था और बेल्जियम का नागरिक था। मारे गए दोनों चरमपंथियों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन वो चरमपंथ से जुड़ा नहीं है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगान ने कहा है कि मंगलवार को ब्राजील में हमला करने वाले आत्मघाती हमलावरों में से एक को बीते साल तुर्की ने वापस भेजा था। अंकारा में दिए एक भाषण में एर्दोगान ने कहा कि बेल्जियम को आगाह किया गया था कि वो खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया गया। ब्राजील के हमलावरों में से एक को जून 2015 में तुर्की में पकड़ा गया था और वापस नीदरलैंड्स भेज दिया गया था। हमने एक राजनयिक पत्र के जरिए 14 जुलाई 2015 को बेल्जियम दूतावास को इसकी जानकारी दी थी। बेल्जियम ने हमारी चेतावनी के बावजूद हमलावर को छोड़ दिया। हमने चेतावनी दी थी कि ये व्यक्ति विदेशी लड़ाका है। बेल्जियम उसके तार चरमपंथ से नहीं जोड़ सका। वही पोलैंड की कट्टरवादी सरकार का कहना है कि वो मंगलवार को ब्राजील में हुए हमलों के कारण यूरोपीय संघ की योजना के तहत एक भी प्रवासी को प्रवेश नहीं देगी। प्रधानमंत्री बिएटा सिज़लो ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है। ब्राजील में मंगलवार को हुए हमलों में आत्मघाती हमलावरों ने शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया था।
ब्रसेल्स हमले में दो भाइयों के शामिल होने की हुई पुष्टि। ये थे दिलनवाज पाशा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं भारत का। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य में सरकार बनाने को लेकर फैसला किया जा सकता है। हाल ही में महबूबा मुफ्ती के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद वहां सरकार के गठन को लेकर उम्मीदें बंधी हैं। राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। मैंने पीडीपी आज होने वाली बैठक पर श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से जानकारी मांगी।
पहले तो ये है कि परसों जब प्रधानमंत्री से महबूबा मुफ्ती की मुलाकात हुई तो ये कोई 2.5 महीने के प्रयासों के बाद हुई है, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रधानमंत्री उनसे मिले और उन्हें कोई आश्वासन दें, और आश्वासन उस समझौते के बारे में वो चाहती थी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के साथ सरकार गठित करते वक्त किया था पिछले साल मार्च में। लेकिन प्रधानमंत्री से मीटिंग के बाद जब वो बाहर आई परसों तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो संतुष्ट हैं, और ये नहीं बताया उन्होंने कि बात अंदर क्या हुई। तो दूसरी तरफ से उन्होंने यहाँ अपने 27 विधायकों और 3 सांसदों की एक अहम मीटिंग बुलाई हुई है आज, और इसमें ये निर्णय लेना है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार को किस तरह से जारी रखेंगे।
पीडीपी ऐसे संकेत दे रही है कि उन्होंने जो शर्तें रखी थी वो मान ली गई हैं, हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि कोई शर्त ही नहीं रखी गई थी और कोई शर्त नहीं मानी गई है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि फॉर्मूला निकल के आया है सरकार गठन को लेकर?
दोनों पार्टियों की बहुत जबरदस्त मजबूरियां हैं जम्मू कश्मीर में। पहले तो इस गठबंधन सरकार का जो मेकअप है, जो इसका प्रोफाइल है, उसको समझना होगा। ये दो पार्टियां हैं जिनको मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनका देहांत हो चुका है, वो समझौते के वक्त ही पिछले साल कह चुके थे कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का गठबंधन है, यानी दोनों पार्टियों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग है। पीडीपी जो है वो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट टोन रखती है और बीजेपी जो है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट टोन रखती है। तो इस तरह से ये दो पार्टियां जो है अपने अपने वोटर बेस को रिझाने के लिए इस वक्त जो ये 2.5 महीने के बाद अब बातचीत हुई है, ये दोनों पार्टियां ये प्रोजेक्ट करना चाहती हैं कि इन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो बीजेपी जरूर ये कोशिश करेगी, उसकी ये पोस्चरिंग होगी कि पीडीपी के साथ अगर सरकार बनाने का फैसला हुआ है तो ये बीजेपी ने सरेंडर नहीं किया है, कोई शर्तें नहीं मानी है। तो दूसरी तरफ से कश्मीर में अपनी वोटर बेस को ये जतलाने के लिए महबूबा जी कोशिश करेंगी कि उन्होंने जो है शर्तें मनवा ली हैं। लेकिन इसमें अभी मुझे लगता है कि कुछ देर और सस्पेंस जारी रहेगा।
तो जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अभी जारी रहेगा। आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कल भारी पुलिस बल यूनिवर्सिटी में तैनात था और पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र घायल भी हुए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर कुछ छात्रों को संबोधित किया। यहां कुलपति प्रोफेसर अप्पा राव पोदल की वापसी के बाद यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल बना हुआ है। इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट कल बंद रखे गए। हैदराबाद पहुंचे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को यूनिवर्सिटी में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। हमने यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अप्पा राव से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,
हमारे लिए बाहर के लोग बोले तो बाहर के लोग है, हम सिर्फ कन्हैया कुमार की बात नहीं कर, हमारे कैंपस पीसफुल रहने के लिए बाहर के लोग आने नहीं देना चाहिए। ये डिसीजन था डीन एंड वाइस चांसलर एंड लोकल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, एक आदमी के लिए कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिए। आप जब कैंपस थोड़ा डिस्टर्ब है, बाहर के लोग आएंगे तो हमें दिक्कत होगी और डिस्टर्बेंस बढ़ेगी।
जब कन्हैया कुमार यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सके तो कन्हैया ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ही कुछ छात्रों को पुलिस की भारी उपस्थिति में छोटा सा भाषण दिया।
स्टूडेंट की आवाज को नहीं सुन रही है और आज ये स्टूडेंट को कैंपस के अंदर नहीं दिया जा रहा है। जो साथी इस हमले में घायल हुए हैं, हम उनके साथ और उनको कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई इस देश के अंदर देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। रोहित बेमुला को न्याय जस्टिस रोहित एक्ट को लागू करवाने की लड़ाई।
लेकिन कैंपस पर परिस्थिति छात्रों और शिक्षकों के लिए गंभीर हो रही है। कल हॉस्टल और कैंटीन बंद कर दिए गए थे और छात्रों को खाना पकाने के लिए भी अनुमति नहीं थी। छात्रों का इल्जाम था कि एक छात्र जो खाना पका रहा था उसको पुलिस ने मारा, जिससे उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। शिक्षक प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण कहते हैं,
एक्चुअली द एडमिनिस्ट्रेशन इज सेइंग नॉन टीचिंग स्टाफ वेंट ऑन स्ट्राइक।
यूनिवर्सिटी का प्रशासन कह रहा है कि कैंटीन और हॉस्टल इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि किसी छात्र ने नॉन टीचिंग स्टाफ को मारा। उसके बाद पीने का पानी और बिजली भी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि कैंपस पर एटीएम भी बंद है। और आज सर्कुलर दिया गया है कि यूनिवर्सिटी सोमवार को खुलेगी। ये थे प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण के शब्द। प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण का कहना है कि बहुत सारे छात्र अभी भी कैंपस पर ही हैं क्योंकि वो 3-4 दिन के लिए अपने घर ना जा पाएंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी में स्थिति तनावपूर्ण बने रहने के आसार हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुके हैं। दिलनवाज, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, आज के अखबारों में कल जो रोमांचक मुकाबला हुआ है उससे जुड़ी खबरें हैं। सबको याद है आखिरी 3 गेंदों पर भारत ने 3 विकेट लिए थे और बेहद रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 1 रन से हरा दिया था।
और तुमने भी तालियां खूब बजाई थी वैसे।
जी बिल्कुल। इसके अलावा जो बेल्जियम में ब्राजील्स में धमाके हुए हैं उससे जुड़ी खबरें पहले पन्ने पर हैं लगभग सभी अखबारों के। कुछ अखबारों ने आज होली है तो उस पर चुटकी मिली है। दैनिक भास्कर ने रंग कई कार्टून प्रकाशित किए हैं और इसमें एक कार्टून में सेल्फी का होली संस्करण में है जिसमें पिचकारी का बटन दबाते हुए अपने मुंह पर अपने आप रंग गिरता है। लेकिन एक खास खबर जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि आज से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 6% बढ़ा दिया गया है और ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ नए मकान बनाने का ऐलान किया है सरकार ने। इस खबर को अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है होली पर केंद्र ने तोहफा दिया। वहीं एक चिंताजनक खबर है हिंदुस्तान के ही पहले पन्ने पर जिसके मुताबिक 7 आतंकवादी जो है दिल्ली पर हमला करने की फिराक में है, इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, हिंदुस्तान की रिपोर्ट कहती है। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, ये खबर भी आज अखबारों में पहले पन्ने पर है। एक और खबर द हिंदू अखबार में है जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती से सरकार बनाने के लिए स्पष्ट संदेश चाहती है। यानी जो महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सरकार बनाने की जो रूपरेखा है लगभग तय होने की खबरें आई थी उसके बाद का ये डेवलपमेंट अखबार में है। वहीं भारत को नेटो देशों के बराबर माना जाए ये अमरीकी संसद ने प्रस्ताव दिया है और इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर की ही एक और खबर है पहले पेज पर, जिसके मुताबिक गोल्ड स्कीम में सोना ही वापस चाहते हैं मंदिर, यानी जो मंदिर हैं वो गोल्ड स्कीम में सोना वापस चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्रों की इस समीक्षा के लिए दिलनवाज आपका।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ, और अब समय विशेष रिपोर्ट का। कश्मीर पर अब तक विशेष रिपोर्ट में आप वहां चरमपंथ के दोबारा शुरू होने के खतरे और वहां बचे कुछ कश्मीरी पंडितों के जीवन पर रिपोर्ट सुन चुके हैं। आज की विशेष रिपोर्ट है कश्मीरी पंडितों के मंदिरों पर, जिनमें से कई चरमपंथ के दौर में या तो गिरा दिए गए या उन्हें जला दिया गया। आज उन मंदिरों का हाल क्या है? कश्मीर में कई मंदिरों के दौरे के बाद जुबैर अहमद ने ये रिपोर्ट तैयार की।
श्रीनगर में ऊंचे पहाड़ों के दामन में यह है शिव मंदिर। पहाड़ आपके पीछे हो तो सामने डल झील नजर आती है। शायद इस जगह की शांति, एकांत और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए ही महर्षियों ने योग के लिए इस जगह का चयन किया होगा, और शायद इसी कारण यहाँ से सटी जमीन पर मुगल बादशाह जहांगीर ने निषाद बाग बनवाया होगा। यहाँ कभी एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, पर आज मंदिर के परिसर की सभी इमारतें नई हैं। महाराज कृष्ण पंडिता इसके सेवक हैं।
ये निषाद गार्डन के साथ में ही एक पुराना 5,500 साल पहले पुराना एक श्राइन है, शिव टेम्पल है यहाँ का। ये आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये पुराना प्राचीन शिवलिंग है पांडवों के जमाने का, कोई 5,500 साल पहले इसकी हिस्ट्री जो हमने यहाँ डिगिंग की, जो यहाँ पे हमें पत्थर मिले उनमें शारदा लिपि में लिखा हुआ है कि ये 5,500 साल पहले का शिवलिंगम है।
पंडिता जिस संस्था के लिए काम करते हैं, इसने इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत करा के इसमें एक नई जान फूंक दी है।
और यहाँ इस मंदिर की हालत देखी, सारी धर्मशालाएं सब मंदिर यहाँ डैमेज हो गए थे, हमने फिर दोबारा इसको रिवाइव करने की कोशिश की। आज आप ये देख सकते हैं, इसको हमने शिव मंदिर पूरा कंप्लीट बना दे दिया, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से शिवलिंगम को उठा के अपनी जगह बिठा दिया। अब आज यहाँ लोग आते हैं, यात्री लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जिन्होंने सुना है कि यहाँ पे ये दोबारा रिवाइव हो गया है।
इस निजी संस्था ने अब तक वादी के 14 मंदिरों और तीर्थ स्थानों की मरम्मत कराई है। कश्मीर में मिलिटेंसी के दौर में कितने मंदिर तोड़े या जलाए गए, इसका सही से अंदाजा किसी के पास नहीं। लेकिन मंदिरों के पुनर्निर्माण के काम में जुटे कुलगाम के विनोद पंडित कहते हैं कि 70-80 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया या उन्हें जलाया गया। उनकी निजी संस्था ने भी कुलगाम के एक मंदिर की मरम्मत कराई है, जिसे 3 साल पहले दोबारा खोला गया। वो कहते हैं,
तो 2013 से हमने नए सिरे से इन जो 3-4 ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, इनका नए सिरे से हमने निर्माण किया, क्योंकि हमारी आस्था इन मंदिरों के साथ जुड़ी है और हमने अपनी आस्था की रखवाली के लिए हमने तन मन और दिन रात इसके लिए हमने मेहनत करनी है और आगे भी हम करते रहेंगे। और ये माता कात्यायनी मंदिर एक ही कश्मीर के हैं, कश्मीर में हैं, जो तहसील कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, साउथ कश्मीर में पड़ता है।
मंदिर हो या तीर्थ स्थान, कश्मीरी पंडितों की जिंदगी का ये एक अटूट हिस्सा है। कश्मीर घाटी की गोद से लेकर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों और इसके दामन में सैकड़ों मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बावजूद इन स्थानों से लगाव के कारण इनमें से कई जम्मू से घाटी आकर मरम्मत के काम में लगे हैं। श्रीनगर में चंद्रपुरा हरवन मोहल्ले में माता भवलेश्वरी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ मरम्मत का काम शुरू हुआ था लेकिन फंड की कमी के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका है। इस मंदिर के परिसर में एक टूटी फूटी इमारत है जिसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। इसी तरह श्रीनगर के एक पहाड़ के दामन में एक शिव मंदिर है, जिसके पुश्तैनी पुजारी ने एक जली इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा,
मेरा नाम रतनलाल कोल है, हम इस मंदिर के पुजारी हैं और हमारे पिताजी भी इस मंदिर के पुजारी थे। ये आप धर्मशाला देख रहे हैं, इसके 93-94 में आग लगा दिया गया लुटेरों ने, और इस मंदिर की मूर्ति भी ले गए, वो ब्लैक स्टोन लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी, वो भी ले गए।
अच्छा, तो वो कौन लोग थे, कुछ पता चला?
नहीं, ऐसे ही वो मिल्टनसी में हादसा हो गया,
ये मरम्मत नहीं हुआ।
नहीं जी, इसमें सिटे है, लावड़ा का ये सिटे है, इसमें तामीर नहीं कर सकते हैं फिर।
क्यों?
ग्रीन बेल्ट आता है, इस साइड ग्रीन बेल्ट आता है।
अच्छा, ग्रीन बेल्ट है।
हाँ जी।
अच्छा, तो जिन लोगों ने इसको आग लगाई थी उनके खिलाफ केस भी हुआ?
नहीं जी नहीं, ये मिल्टनसी का चल रहा था उस टाइम, कौन केस लगाए, गवर्नमेंट उनसे भी डरती थी। ये मंदिर बंद पड़ा था कोई 10-12 साल बंद पड़ा था, उसके बाद कोई 8-7 साल से हमने फिर से खोल दिया है।
यहाँ पूजा होती है?
हाँ जी बिल्कुल होती है, सुबह शाम आरती होती है, टूरिस्ट भी आते हैं।
श्रीनगर में मुसलमानों की एक घनी आबादी के बीच एक शानदार शिव मंदिर है, जिसे देखकर ही लगता है कि इसकी हाल में मरम्मत हुई है। महर्षि पंडिता इस मंदिर की रखवाली 1960 से कर रहे हैं।
ये मंदिर 700 साल पुराना है, तो इसमें मैं यहाँ पर 60 से रह रहा हूँ, तो जो इसकी में मूर्ति है शिवलिंग जो है वो तकरीबन 2000 साल से ज्यादा पुराना होगा। मंदिर पे उन्होंने किया आगजनी लगा दी, 2-3 बार आग लगाया इसमें रात के समय। फिर यहाँ पर महले वालों ने सिक्योरिटी पुलिस को बताया और उन्होंने सिक्योरिटी मंगवाई यहाँ पर, जो यहाँ महले में सब हिंदू रहते थे वो यहाँ से चले गए, और जो हमारे नेबर थे मोमडन तो उन्होंने भी हमारा थोड़ा हेल्प कर दिया।
सभी कश्मीरी पंडितों ने हमें बताया कि अब मंदिरों पर हमले नहीं होते, मरम्मत के काम में बाधा नहीं होती और कश्मीरी मुसलमानों का उन्हें पूरी तरह से सहयोग हासिल है। लेकिन समस्याएं अब भी कई हैं। कुछ मंदिरों की मरम्मत के बावजूद वहां पूजा करने वाले कश्मीरी पंडित नहीं हैं, कुछ बंद पड़े हैं। कुछ मंदिरों के दरवाजों पर तख्तियाँ टंगी हैं जिनमें मंदिर के रखवालों के नाम और फ़ोन नंबर लिखे हैं। कोई पूजा करने में दिलचस्पी रखता हो तो उसे फ़ोन करके पुजारी को बुलवाना पड़ता है, लेकिन अधिकतर मंदिर खुले हैं। कुछ मंदिर खास धार्मिक अवसर पर ही खोले जाते हैं। यहाँ रहने वाले कश्मीरी पंडित कहते हैं कि अगर पंडितों की वापसी हुई तो ये मंदिर उनका स्वागत जरूर करेंगे। जुबैर अहमद, BBC, श्रीनगर।
और आज जैसा कि होली है, होली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर कवि सम्मेलनों के आयोजन की एक परंपरा आम बात हो गई है। होली के मौके पर त्यौहार से पहले और बाद में नुक्कड़ मोहल्लों से लेकर बड़े स्तर के भी कई कवि सम्मेलन आयोजित होते हैं। कवि सम्मेलनों की खास बात यह है कि उनका विषय ज़्यादातर हास्य व्यंग होता है और आयोजनों के नामकरण की भी एक दिलचस्प परम्परा है। कवि सम्मेलनों की इस परम्परा पर पेश है समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
तो आप अपने मोबाइल फोन मनमोहन सिंह मोड पे डाल दें और दूसरा अपने हाथों को दिग्विजय सिंह मोड पे रखें।
बुरा न मानो होली है, शायद होली के मौके पर इसीलिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। इसके बहाने किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है और कोई भी इसका बुरा मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये परंपरा है, त्योहार है और फिर कहीं न कहीं धर्म से भी जुड़ा है।
कि पहनाई जिसे अंगूठी अंगूठा दिखा गई, चक्कर चलाया मैंने वो डैडी को भाग गई।
होली ऐसा त्योहार है जिसमें हुड़दंग और मौज मस्ती के साथ साथ हास परिहास, व्यंग्य, तंज, अल्हड़ता, आलोचना, बुराई, तारीफ जैसी कई क्रियाएं और विशेषण सीधे सीधे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका कोई अन्य अर्थ न तो निकाला जाता है और न ही सांस्कृतिक तौर पर निकालने की इजाजत है। कवि सम्मेलनों में कविताओं की जितनी रंगीन बयानी सुनने को मिलती है, उनके नामकरण और आयोजनों की भी दुनिया कम दिलचस्प नहीं। इलाहाबाद में लंबे समय से कवि सम्मेलनों के आयोजन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी कहते हैं,
प्रयाग में जैसे धकाधक कवि सम्मेलन होता है, महालंच सम्मेलन होता है, हमने अपने यहाँ मुगदर बारात निकालते हैं, चौक में मुर्दा बारात निकलती है और हथौड़ा बारात निकलती है। कवियों को कभी हम कद्दू देते हैं, लौकी देते हैं, बैगन देते हैं, वो भी इसलिए कि बस जनता को हंसे और उसके अंदर एक अच्छी चीज देखने को मिले।
ये एक उदाहरण है, ऐसे आयोजन देश के कोने कोने में होते हैं। होली के मौके पर कवि सम्मेलनों की बात हो और उसमें बनारस का जिक्र ना हो ऐसा संभव ही नहीं।
चाहता हूँ जिसे किसी और को वो चाहती है, भाव भंगे माए देख विश्वास हो गया, और यारो मेरे यारो मुझे मारो या उबारो, मैं तो पारो की गली में जाके देवदास हो गया।
बनारस में भी 80 घाट की होली दुनिया भर में मशहूर है और इसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भी आया करते थे। बताया जाता है कि इसमें सीधे तौर पर अश्लील गालियों के साथ कविताएं सुनाई जाती थीं। आज भी ये परंपरा कायम है, लेकिन जगह और स्वरूप थोड़ा बदल गया है। असी घाट के कवि सम्मेलन के आयोजन से जुड़े रहे प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र बताते हैं।
मोहल्ले के विवाद के कारण 1993-94 में 80 पर गाली की परंपरा बंद हो गई, लेकिन टाउन हॉल में हास्य कवि सम्मेलन के नाम से आज भी होता है, लेकिन उतना उग्र रूप में जो उस समय होता था वो नहीं चलता। 80 वाला तो काव्य सम्मेलन शुद्ध रूप से गाली ही होती थी।
कौशल किशोर मिश्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग के अध्यक्ष हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे भी उन कविताओं के कुछ नमूने सुनाए जिन्हें मैं होली होने के बावजूद आपको सुना नहीं सकता। उनका कहना है कि बनारस में गाली भी एक संस्कृति है और इसे लोग बुरा नहीं मानते। होली पर बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं।
पंडित कमलापति त्रिपाठी 1980 में राजनारायण से चुनाव जीत गए थे, राजनारायण चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने उस समय के बेढब बनारसी को कमलापति जी ने पान मिठाई और पैसे भिजवाया और कहा कि कवि सम्मेलन में मुझे गाली मिलनी चाहिए। तो बेढब बनारसी ने पंडित कमलापति त्रिपाठी को कवि काव्य गालियां बहुत अधिक दी और राजनारायण ने स्वयं गाली की कविता सुनाई।
बताया जाता है कि बनारस की इस होली की परंपरा की शुरुआत हिंदी साहित्य के छायावाद युग से ही हुई है और हिंदी के तमाम नामी गिरामी कवि और लेखक भी इससे सक्रियता के साथ जुड़े थे। बकौल कौशल किशोर मिश्र,
जयशंकर प्रसाद जी ने 1930 के बाद काशी में होली की गाली की एक परंपरा शुरू की थी, उसमें प्रेम चंद भी रहा करते थे। 1980 तक ये परंपरा चलती रही, चकाचक बनारसी उसके चर्चा धर्ता हुआ करते थे। ओशेली गाली में कविताएं होती थी देश के राजनीतिक प्रवेश पर, देश का और विदेश का कोई भी बड़ा नेता नहीं बचता था जिसको गालियां न दी जाती थी।
कवि सम्मेलनों की ये परंपरा मंचों पर आयोजित होने के अलावा 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पर भी खासी लोकप्रिय हुआ करती थी। प्रदीप चौबे, गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, पॉपुलर मेरठी जैसे न जाने कितने कवि और शायर इसमें शिरकत करते थे। कवि सम्मेलनों की ये परंपरा आज भी कायम है, स्वरूप थोड़ा भले ही बदल गया हो। आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि संचार क्रांति के इस दौर में ऐसे आयोजन और लोकप्रिय हो रहे हैं। क्योंकि भागम भाग भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही कुछ सुकून का पल तो मिलता ही है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब बात खेल में वर्ल्ड कप T20 की, जिसमें कल बांग्लादेश और भारत के बीच हुए रोमांचकारी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को एक रन से मात दी। खेल समाचार रजत चन्ना के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। सबसे पहले बात क्रिकेट की। ICC वर्ल्ड T20 के सुपर 10 मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दर्ज की एक बेहतरीन जीत और बांग्लादेश को एक रन से हराया। आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत थी भारत को और हार्दिक पांड्या ने भारत को जीत तक पहुंचाया। वरिष्ठ खेल पत्रकार मलेलीरव ने तारीफ की महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम की इस जीत पर।
महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करना चाहूंगा। धोनी ने अंत समय तक इस धैर्य का परिचय दिया, जिस तरह से गेंदबाजों की हौसला अफजाही करते रहे। जडेजा को गेंद न थमाकर उन्होंने अंतिम ओवर पांड्या को थमाए। कप्तान के रूप में जो अंत समय तक मैदान नहीं छोड़ता, हार नहीं मानता, अपने खिलाड़ियों के मनोबल को गिरने नहीं देता, मैं धोनी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी।
बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश 147 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, लेकिन बांग्लादेश का पहला विकेट 11 रनों पर गिर गया। उसके बाद तमीम इकबाल, साबिर रहमान और शाकिब अल हसन ने एक अच्छी बल्लेबाजी की। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा जल्द ही आउट हो गए। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन। कप्तान धोनी ने भारत को अंत तक पहुंचाया। भारत ने 20 ओवर में 146 रन बनाए। वहीं कल दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में ICC वर्ल्ड T20 के ग्रुप ए के सुपर 10 मुकाबले में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 15 रनों से मात दी। इंग्लैंड के 143 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन ही बना पाई। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 142 रनों का स्कोर खड़ा किया। और विश्व के तेज धावक जमैका के यूसेन बोल्ट ने इसी साल होने वाले रियो ओलंपिक के बाद संन्यास लेने का फैसला लिया है।
खेल समाचार सुना रहे थे रजत चांदना। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
फ्रांस और बेल्जियम के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को ब्राजील में आत्मघाती हमला करने वालों में से एक ने बीते साल नवंबर में हुए पेरिस हमलों के लिए बम बनाए थे। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश कार्टर का कहना है कि ब्राजील के हमले दर्शाते हैं कि यूरोप को इस्लामिक स्टेट को सीरिया और इराक में हराने के लिए और अधिक कदम उठाने की जरूरत है। ओबामा ने कहा कि ऐसा सोचना गलत है कि सीरिया और इराक में अंधाधुंध बमबारी करने से मदद मिलेगी। ब्रितानी शोधकर्ताओं का कहना है कि स्कैन करने के तरीके में हुए सुधार से गले और सिर के कैंसर के लिए कैमियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कराने वाले मरीजों को सर्जरी की जरूरत कम पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन में लड़ रहे विपक्षी गुट संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए हैं जो अगले महीने 10 अप्रैल से शुरू होगा। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। विश्व भारती में 8 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।